मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ जो दूसरी घटनाएं खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। अखबारों में हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, हालांकि ये बहुत कम अखबारों में छपा था, और वह है डे लाइट सेविंग टाइम। इसके बारे में बहुत सरल है, डे यानी कि दिन, लाइट यानी कि प्रकाश, सेविंग यानी कि बचत करना, और टाइम यानी कि समय, यानी कि जो दिन का प्रकाश हमारे पास आ रहा है कैसे हम उसके समय की बचत कर सकें। सामान्य तौर पर सीधे सीधे इसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ यह है कि देखिए, दिन और रात होते हैं और हमने टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने बजे से रात की शुरुआत हो जाती है और इतने बजे रात खत्म हो जाती है और दिन की शुरुआत हो जाती है, और हम सबकी दिनचर्या लगभग लगभग इसी से नियंत्रित होती है और उसे ही हम फॉलो करते हैं। अब अमेरिका सोच रहा है कि अब दिन के समय में एक घंटे की वृद्धि की जाए, एक घंटे की बढ़ोतरी की जाए, और खासकर ये जो बढ़ोतरी होगी इसके लिए जो सिस्टम लागू किया जाएगा उसे ही कहा गया है डे लाइट सेविंग टाइम सिस्टम। देखिए ऐसा क्यों है, इसलिए कि अमेरिका जैसे देशों में ये देखा जा रहा है कि जो लोग रात में देर तक काम करते हैं या जो सिंगल पेरेंट्स हैं जो अपने छोटे बच्चों की देखभाल भी कर रहे होते हैं वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। अब देखिए दिमाग में उनके आ गया कि अरे अब तो सुबह हो गई, दिन हो गया, तो वो उठ जाएंगे, तो और इसका दुष्प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उनकी याददाश्त पर पड़ रहा है, उनके फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे नींद लें, भरपूर नींद लें। अब वो कैसे नींद लें, तो इसी के लिए यह सिस्टम लाया जा रहा है डे लाइट सेविंग टाइम सिस्टम। इसके उनके दिमाग में यह दर्ज हो जाएगा कि नहीं अभी दिन की शुरुआत नहीं हुई है तो वो ज्यादा समय तक सो सकेंगे, और बकायदे अमेरिका ने इसके लिए सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट भी पारित कर दिया है। देखिए सनशाइन सूर्य की चमक, प्रोटेक्शन कैसे हम उसे बचा करके रखें, कानून पारित किया जा चुका है और उम्मीद है कि शायद अगले साल तक यह लागू हो जाएगा। इसका इतिहास थोड़ा सा यह है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो जर्मनी ने इसे अपने यहां लागू किया था, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके बारे में केवल अमेरिका ही नहीं सोच रहा है कि वह अपने यहां इस सिस्टम को लागू करे, बल्कि दुनिया के लगभग 70 देश ऐसे हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक व्यावहारिक दिक्कत तो आप भारत में भी आप देखते हैं कि किस तरीके से जो गर्मी के दिन होते हैं हमारे लंबे होते हैं, जबकि जो ठंड के दिन है वो तो काफी छोटे हो जाते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ यह सिस्टम है डे लाइट सेविंग टाइम सिस्टम। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने थोड़े से अलग ही अंदाज में बात करने जा रहा हूं, और इसका संबंध कल के एक एडिटोरियल कमेंट से है। तो पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कल मैंने भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया था, स्वास्थ्य ढांचे पर काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि आपने एडिटोरियल कमेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा। जो भी स्थिति हो आपको अपना विश्लेषण करना चाहिए। अगर छोड़ा तो आपने क्यों छोड़ा, क्या सच में ये छोड़ने लायक था, और यदि आपने पढ़ा तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन फिर पढ़ने के बाद आपने उसके साथ क्या किया, क्या उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट किए जिनका आप इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या आपको अपने दिमाग पर इतना भरोसा है कि आपने जब एक बार पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में अंत तक वो मौजूद रहेगा, आप उसे भूलेंगे नहीं, और यदि आपको इतना भरोसा नहीं है तो फिर आपने क्यों नोट नहीं किया, क्या आपको लगा कि इसमें नोट करने लायक कुछ भी नहीं है। प्लीज इन सब बातों पर थोड़ा सा विचार करें। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे एक बात कही थी, और मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर यकीन करने वालों का जो प्रतिशत है वो नहीं के बराबर होगा। मैंने आपसे सबसे कहा था कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत होती है, या यूं कह लीजिए कि कम चीजों को सही तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन माहौल इस तरह का बन गया है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए मैंने कहा कि शायद मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन ठीक है, मैं अपनी बात जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मैं कन्विंस हूं, जो खुद मेरी अपनी स्टाइल रही है, बहुत लोगों से बात करने के बाद भी जिस पर मेरा भरोसा बढ़ जाता है मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ वे बातें आप तक पहुंचाई ही जानी चाहिए। दोस्तों, जो बातें मैंने कही हैं, प्लीज आप उन पर विचार करें। समय समय पर ऐसी बातों पर विचार किया ही जाना चाहिए। इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ें, प्लीज पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। इस बार इस रूप में पढ़ें कि यह एडिटोरियल कमेंट इंपॉर्टेंट है, और इस रूप में भी पढ़ें कि इसमें से मुझे कुछ नोट करना है। आंकड़े तो आप नोट कर लेंगे, लेकिन दिमाग में आपको एक विचार भी लाना होगा, एक अलग तरह का विचार लाना होगा। वो विचार इसमें दो बिंदुओं के रूप में उपलब्ध है। पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारे यहां एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इस अवधारणा के कारण जो राज्य है वो क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है, जिसे हम रेवड़ी बांटना कह रहे हैं, और इस पर आपको मालूम है कि किस तरीके से बहस हो रही है। राज्य क्या कर रही हैं? चूंकि उन्हें कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रही है तो खूब रेवड़ियां बांट रही हैं। जब रेवड़ियां बांट रही हैं तो उनके पास धन ही नहीं बच रहा है। जब धन नहीं बच रहा है तो वो कैसे शिक्षा की व्यवस्था करें, और कैसे स्वास्थ्य के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह चाहिए, वो बनवाएं, उसके लिए धन नहीं बच रहा है। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, वो उत्तर भारत में ज्यादा है। उत्तर भारत कह लीजिए, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में ज्यादा है। पश्चिम और दक्षिण भारत की स्थिति इससे बेहतर है। पूर्व और उत्तर भारत की अपेक्षा पश्चिम और दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर है, वो भी हिंदुस्तान के हिस्से हैं। तो एक विचित्र किस्म की स्थिति हमें साफ साफ दिखाई देती है, और इस बात को बकायदे इस एडिटोरियल कमेंट में आंकड़ों के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपको चाहिए कि दक्षिण भारत का एक आंकड़ा ले लें, उत्तर भारत का एक आंकड़ा ले लें, बस ज्यादा सारे आंकड़े नोट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दो विचार आपके सामने आए, एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो बात कही गई है, और दूसरा किस तरीके से उत्तर पूर्व भारत एक तरफ है और दक्षिण और पश्चिम भारत एक तरफ है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के जो ढांचे में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसका इंपैक्ट किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, ये दो विचार आपको इस एडिटोरियल कमेंट में दिखाई देंगे। सवाल यह है कि आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब इत्मीनान से उसे पढ़ें, और पढ़ने से पहले आप ये भरोसा कर सके कि नहीं, इसे मुझे इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो भ्रष्टाचार को लेकर है। जाहिर है कि भ्रष्टाचार की जो मैं बात कर रहा हूं वो खासकर इसी बात से संबंधित है कि किस तरीके से, आपको मालूम है कि गुजरात का एक पुल ढह गया है और उसमें कितने लोगों की मौत हो गई है। आप इसके बारे में अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद वहां गए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, इसके लिए फिर उन्होंने मीटिंग ली, आवश्यक निर्देश दिए, और ये कम दुर्भाग्यजनक घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित आपदा है। जब आप आपदा वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप तूफान प्राकृतिक आपदा है, और इस तरह की जो आपदाएं हैं ये मनुष्य निर्मित आपदाएं हैं। इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने आज एडिटोरियल कमेंट लिखा है, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उसका बेस ये एडिटोरियल कमेंट ही है। देखिए, जब हम भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक की बात करते हैं तो इस पर बिल्कुल बनी बनाई चीजें हैं। आप किताबों में पढ़ लीजिए, बात बन जाएगी, खत्म हो गई। आप भ्रष्टाचार क्यों है, क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, आप समझ जाएंगे। लेकिन सिविल सर्विस उससे आगे की बात करता है कि आप कैसे अपने इस टॉपिक को अपडेट कर पाते हैं, एक नए नजरिए से देख पाते हैं, नई दृष्टि से उसका विश्लेषण कर पाते हैं, कैसे उसमें भ्रष्टाचार के जो नए स्वरूप सामने आ रहे हैं उन्हें शामिल कर पाते हैं, तभी जाकर के सिविल सर्विस का जो आपका आंसर है वो सही रूप ले पाएगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए शुरू में ही बहुत अच्छी बात कही गई है जिसे आप नोट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग दो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे हम कहते हैं, दो तरह के भ्रष्टाचार की बात करता है। अब यहां देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में ये आपको एक नया तथ्य मिल गया, या हो सकता है कि आपने नोट्स बनाए हो तो उसमें शामिल हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी कम से कम एक रिवीजन तो हो ही गया कि नहीं नहीं अगर आंसर लिखना हुआ तो मैं इसे जरूर शामिल करूंगा। यही तो पढ़ने का एक तरीका है। एक कहते हैं वो कोअर्सिव, कानून का भय दिखा करके कि जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, तुम्हारी ये कुर्की हो जाएगी, जेल का भय दिखा दीजिए आप, वो बेचारा घबरा जाएगा और कुछ कोई भी रकम देने को आपको तैयार हो जाएगा, ये कानून का भय हो गया। और दूसरा है समझौते से, कोल्यूसिव। समझौते से मतलब है कि इस रजामंदी है, और खासकर इस पर बहुत कमेटीज बैठी भी हैं और बाकायदे उन कमेटीज ने, वोरा कमेटी ने तो साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि यहां एक बहुत विचित्र किस्म का अपवित्र गठबंधन तैयार हो गया है जिसमें राजनीति के लोग शामिल हैं, जिसमें नौकरशाह शामिल हैं और जिसमें उद्योगपति शामिल हैं या कह लीजिए पूंजीवादी व्यवस्था के लोग शामिल हैं। इन तीनों ने आपस में समझौता कर लिया है। समझौता ये कर लिया है कि ठीक है, हम सब एक दूसरे के हित का साधन करेंगे। खासकर अभी जो पुल टूटा है उसे इस कॉल्यूसिव यानी कि जो समझौते से भ्रष्टाचार हो रहा है उसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पुल टूटा, उसे बनाने वाला कोई ठेकेदार होगा, उसकी देखरेख करने वाला कोई इंजीनियर होगा, डेफिनेटली राजनेता भी होंगे। तो सवाल ये उठता है कि सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, उसकी देखरेख करने वाले लोग हैं, उसको सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं, बीच बीच में उसकी जांच पड़ताल होती रहती है, इन सब के बावजूद यह घटना क्यों घटित हुई? तो सीधी सी बात है कि निश्चित रूप से जो ठेकेदार होगा उसके और जो ब्यूरोक्रेट्स में जो भी व्यक्ति होगा उस समय या कई लोग होंगे उनके बीच में एक सहमति बनी, एक समझौता बना हुआ कि भाई ठीक है तुम इस तरह की चीजें लगा दो, जर कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का ही लगा दो, बाकी पैसा हमें दे दो। आपस में बंदर बांट हो गई और उसी का नतीजा हुआ कि इतना बड़ा हादसा घटित हुआ। तो दोस्तों आप इस एडिटोरियल कमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों प्लीज उन्हें नोट भी कर लीजिएगा। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक मित्र हैं जया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।